ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड के वारसा पहुंचने पर सैन्य हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने भी एक होटल में उनका पारंपरिक स्वागत किया। श्री मोदी ने जाम साहब नवा नगर स्मारक, मॉन्टे कैसिनो युद्ध स्मारक और कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी वारसा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान से पहले कहा कि पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और बहुलतावाद के प्रति भारत पोलैंड की प्रतिबद्धता दोनों देशों के संबंधों को और सुदृढ़ करती है। पोलैंड की दो दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अफ्रीका की इच्छाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं में बड़ी समानता है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीकी राष्ट्र अपने लोगों को गुणात्मक जीवन प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत और अफ्रीकी देश अपने लोगों की जीवन शैली को बेहतर करने तथा खुशहाली बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि अफ्रीका के साथ 10 सिद्धांतों के आधार पर भारत के संबंध जारी रहेंगे, लेकिन इनमें से प्राथमिकता अफ्रीकी देशों को ही दी जाएगी। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने आतंकवाद और उग्रवाद के दुष्प्रचार के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ भारत सम्मेलन में श्री डेल्फिन ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में यूरोपीय संघ के पास लंबा और पर्याप्त अनुभव है। पूर्व विदेश सचिव और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ कमल सिंपल ने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री पर दो दिन की यह चर्चा काफी सार्थक रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आयकर विभाग से करदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने का आह्वान किया है, जिससे करदाताओं में डर की भावना पैदा न हो। नई दिल्ली में आयकर के 165वें वर्ष के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने भेजे गए नोटिस के कारण का स्पष्टीकरण शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 72% करदाता पुरानी व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में आए हैं। उन्होंने कहा कि नए करदाताओं की संख्या बढ़ी है और कर दायरा भी बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में सरकारी नौकरी के भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक रोक दी है। आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद की 5600 रिक्तियों और हरियाणा लोक सेवा द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बारे में शिकायत की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समारोह में उन्होंने यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि फिलहाल विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा है और भारत भी इन अवसरों और चुनौतियों से लाभान्वित होने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि देश की गौरवशाली धरोहर हमें गौरवान्वित करती है और देश के युवा इसका एक हिस्सा है जो आगे भी इसे बनाए रखेंगे। देशभर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। पिछले वर्ष 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़कर लगभग 44 अरब डॉलर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिलाधिकारी को पीड़ित की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।